ચિતરણ ઉપલબ્ધા થયું વિદ્વા પુરુષોત્તમ મા ભૂત કિંજામ માયા પતામાં જન્મો શ્રી શુકરવાસ ચિતરા ઉપલબ્ધા થયું પુરુષોત્તમ મા ભૂતે માયા જન્મો
પરિકરો કો
मोहित रखती है और स्वर्ग को आच्छादित करके माधुर्य को प्रकट करती है। इस अध्याय के पहले वाले अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे मातरम पितरम चैव मोचयित्वा कुबन्धनात्। कंस का वध करने के बाद श्री भगवान कंस की स्त्रियों को अपनी मामियों को सांत्वना दिए, कंस का दाह संस्कार आदि कर्म कराए और उसके बाद कारागृह में जाकर माता पिता को बंधन से छुड़ाए। मातरम पितरम चलो मुठ एकता बन गया। देवकी वसुदेव बंधन में थे, दो तरह से बंधन था। एक तो जेल में बंद थे, दूसरे ऊपर से हथकड़ी देने का बंधन, हाथ में भी बंधन था, पैर में भी बंधन। भगवान जा करके हथकड़ी देने खोले और कृष्ण रामू कृष्ण बलराम दोनों माता पिता के चरण में सिर रख कर प्रणाम किए। प्रणाम किए, भगवान श्री बलराम का सिर और श्री कृष्ण का सिर माता पिता के चरणों से लग रहा था। वसुदेव कहते हैं कि देवकी वसुदेवश्च गान गए थे कि ये साक्षात परम ईश्वर हैं, भगवान हैं। अभी भी देखते थे बड़े बड़े पहलवानों को मारे, अति बलशाली कंस का वध कर दिए, कई लोगों के मुख से सुने हैं कि ये साक्षात विष्णु हैं, नारायण स्वयं से हैं, भगवान नारायण ने अवतार लिया है इत्यादि। उन बातों को सुनने से और देखने से जान गए कि ये साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, विद्या जगदीश्वर है, ये जगदीश्वर है। दोनों समस्त जीवों के ईश्वर हैं, इसलिए उनको ईश्वर जान करके न स्वर्गते वायण्य नहीं किए, कृत संबंध न पुत्र, जबकि दोनों पुत्र सम्यक वंदना किए, जमीन पर लौट कर चरणों में माथा रह करके प्रणाम किए, लेकिन फिर भी उठा करके आलिंगन नहीं किए। आश्चर्य की बात, 11 वर्षों के बाद भेंट हुई है अपने पुत्रों से। जन्म होते ही कृष्ण दूर हो गया, उनको नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया गया है और श्री बलराम भी गर्भ से अदृश्य हो गए थे, उनसे भी भेंट 11 वर्षों के बाद हो रही। और इसमें जिस धिकार के भेंट के बाद भी वे श्री कृष्ण बलराम को हृदय से नहीं लगाए, केवल शंकित आई तो शंकित हुए कि ईश्वर को जो ब्रह्मा शिव आदि सबके शासक हैं उनको कैसे हृदय से लगाए, बल्कि उल्टे हाथ जोड़ करके खड़े थे, दोनों पुत्र प्रणाम कर रहे हैं और माता पिता हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हृदय से नहीं लगाए। इस दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण अपने को बड़ा फीका अनुभव किया, जिसको माँ अपने हृदय से नहीं लगा रही है और पिता इतने अंतराल के बाद बुरा लगेगा ना। भगवान पुरुषोत्तम में सबक जो है ये जान गए कि इनके हृदय में ऐश्वर्य भाव भरा है, इसको अर्थ कहा गया है, उपलब्ध उपलब्ध अर्थ अर्थ उपलब्ध ऐश्वर्य का भाव छा गया था मन में। भगवान के भिन्न भिन्न परिकर हैं, पार्षद हैं, स्थान स्थान पर बहुत से पार्षद हैं, परंतु उनका भाव भिन्न भिन्न है। द्वारका के परिकरों का ये भाव है, कृष्ण के प्रति ममता है, परंतु वे यही जानते हैं कि भगवान हैं, ईश्वर हैं। कभी कभी ऐश्वर्य भाव उदित हो जाता है, जैसे रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी को भगवान ने कह दिया तुम किसी और से विवाह कर दो, मैं राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए तुमको लाने लाया, मैं स्त्री आदि में तो असत्य नहीं हूँ, अतः अभी समय है तुम किसी योग्य राजा को अपना पति बना लो। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी बेहोश होकर के गिर गई, जबकि भगवान केवल विनोद किए, वास्तव में नहीं कह रहे थे, विनोद किए। रुक्मिणी जी बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गए, तब भगवान के चार भुजाओं से उनको उठाए, उनका पेट समा रहे, उनको समझाने लगे, सांत्वना देने लगा। तो भगवान ने कहा है कि मैं तो ये सोचता था कि जब मैं ऐसा कहूँगा कि दूसरे से विवाह कर लो तो तुम क्रोध से मेरे तरफ देखोगी, मुझे डांटोगी, मुझसे रुष्ट हो जाओगी, लेकिन तुम तो उनके बेहोश होकर गिर गए। भगवान ने यहाँ तक कहा गृहस्थ को यही तो एक सुख है कि अपनी उठी हुई प्रिया को मना रहे, लेकिन मैं तो अभी सुख लुक नहीं रहा, तुमको कह दे दूसरे से विवाह करके तो तुम बिल्कुल दूर करो। द्वारका के परिकरों का यह स्वभाव है, माधुर्य पर ऐश्वर्य हावी हो जाता है, ये कृष्ण को ईश्वर जानकर डर जाते हैं। उनका प्रेम संकुचित हो जाता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, उसको देख करके अर्जुन बिल्कुल डर गए, जबकि वही प्रार्थना किए थे कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे संसार को बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं और नष्ट करते हैं। तो भगवान ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया, तो देख करके अर्जुन घबरा गए, हम जब प्रार्थना करने लगे आप हमको माफ कीजिए, मैं आपको जादू कहा, आपको सखा कहा, बहुत अपराध किया और हमको वही रूप दिखाइए, वही रूप होगा। तब भगवान ने अपना विश्व रूप संवरण कर लिया। अर्जुन को कहा तुम घबराओ मत, लेकिन व्रत के जो परिकर हैं उनको भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाने, वो कृष्ण को अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना पुत्र नहीं मानते हैं। कुछ भी दिखाने, जैसे कृष्ण ने यशोदा को दिखाया, अपने मुख में पूरा विश्व दिखाया, फिर भी माता यशोदा जांच रही थी, मिट्टी खा ली और निकालो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा मिट्टी खाने, जांच रही है, सारा संसार कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है और फिर भी कृष्ण को जांच रही है। कृष्ण का ऐश्वर्य माँ यशोदा के वात्सल्य भाव को कुंठित नहीं कर सका। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब कृष्ण को माँ यशोदा उखल बांध दी, बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, कहते थे कि जानती हो कृष्ण कौन है, ये नृसिंह भगवान है, ये बारह भगवान है, यही सब अवतार लिया। तो माँ यशोदा कहती है कोई अवतार लेने के लिए दूसरे का घर नहीं है, यही सब अवतार हो गया, अभी छड़ी से मारूंगी बस अवतार सब निकल जाएगा। कृष्ण तो ये अवतार है, नृसिंह है, राम है, और तुम कौन हो? श्री बलराम का तो मैं सिंहासन हूँ, मैं सारे विश्व का प्रलय करता हूँ, लेकिन माँ के सोचा कि छोड़ी को कहकर भाग कर, और कृष्ण के पास जाके कहते हैं तो माँ मार रही है, बांध रही है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम चोरी छोड़ दो। और चोरी करते हो तो करो, ये घर का मटका चोर छोड़ो, मधुर भाव इतना बलवान है को ऐश्वर्य को दबा देता है। और भगवान को यही पसंद है, चैतन्य चैतालीस में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना के बर माने हमारे सन ही से इधर है, यानी कहाँ रह भी, जो भक्त अपने को बड़ा मानता है और हमको ही बुद्धि और बल में ही मानता है, इस तरह प्रेम करता है तो शेष भाव से मैं उसको बस में रहता हूँ। कृष्ण को अपने समान मानना या अपने से भिन्न बुद्धि वाला समझ करने की चिंता करना यह श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे माँ यशोदा सोचती है कि ये बच्चा है, इसको भी बुद्धि नहीं है और शारीरिक बल भी नहीं है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको मिट्टी नहीं खाने देना चाहिए और इसकी चोरी की आदत को मिटा देना चाहिए। तो आज से चोरी सीख रहा है तो पता नहीं आगे तो वो क्या क्या चोरी करेगा। तो माँ के सोचा चिंता में रहती है कि इसको डांट करके या मार करके बांध करके ठीक करना है। माता मोरे पुत्र भावे करे न भगवान अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। माँ के सोचा मुझे अति हीन बुद्धि का समझ करके मेरा पालन करती है, भर्सना करती है, उखल को बांधती है, यह भाव मुझे बहुत प्रिय है। और जो कहते हैं सखा शुद्ध सखे करे स्पंधे आरोहण, तुम कौन बल लोग तुम अनुसार। हमारे सखा शुद्ध सख्य में हमारे कंधे पर चढ़ते हैं, घोड़ा बनाते हैं और कहते हैं तुम कौन बड़ा आदमी हो, हम और तुम समान हैं। परंतु द्वारका के परिकर भिन्न है, माता देवकी और वसुदेव की द्वारका के परिकर भिन्न, स्वर्ग को सुन करके देख करके ये मानते हैं कि मैं हम कृष्ण से प्रणाम ले रहा है या गलती है, कृष्ण को ही प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अभी बात है, जो जानते हैं कि हमारे पुत्र हैं कृष्ण और बलराम पुत्र हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं परंतु वे हृदय से नहीं लगा रहे। भगवान जान गए उनके आए स्वर्ग भाव को तो मन में सोचते हैं माँ भूत की माँ अस्थि, ये नहीं होना चाहिए। हमको तो ये भाव प्रिय है कि हमको हृदय में लगा दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए। तो चाहते थे कि माँ देवती हमको आशीर्वाद दे, आई तुझा आशीर्वाद। हम चाहते थे कि माँ हमको आशीर्वाद दे, पिताजी हृदय से लगा हुए आशीर्वाद दे और उनके ईश्वर भाव को पसंद नहीं किया। माँ भूत का अर्थ है कि माँ अस्तु, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने अपनी जन्मोहिनी माया को फैलाया, जन्मोहिनी का अर्थ है जो जनों को भगवत पार्षदों को मोह में रखती है। मोह का क्या है, स्वर्ग को भुला करके और कृष्ण के प्रति ये बुद्धि करती है जो शक्ति ये हमारे पुत्र हैं या हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है। ईश्वर भाव को जो शक्ति भुला देती है उस शक्ति को अंतरंगा शक्ति कहते हैं, योग माया। उसको मोहिनी इसीलिए कहा जाता है को मोह में रखती है। स्वयं भगवान को भी माया मोह में रखती है। विश्व पहले मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, माँ यशोदा का पुत्र हूँ। जिस तरह है इस प्राकृतिक जगत में सभी जीव भगवान की बलगंगा शक्ति से मोहित हैं, इसमें तो अज्ञान है और इस अज्ञान में मानते हैं, किसी को पुत्र मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, इस तरह से सारा संसार बंधा हुआ है माया है। ये माया है जो जगत में जीवों को भ्रम में डाल करके रखती है, शरीर में आत्मबुद्धि पैदा करती है। मैं ये देह हूँ ऐसा भाव होता है और देह के सब संबंधी हमारे हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश, इस तरह से हमारा पता नहीं कितना फैला। यह सब बहिरंगा माया करती है, लेकिन भगवान के जो परिकर हैं उनके साथ पार्षद रहते हैं, उनको मोह में रखना ये अंतरंगा शक्ति का काम है, योग माया। भगवान चाहते हैं हमसे शुद्ध प्यार किया जाए। भगवान ये पसंद नहीं है कि बस केवल ओम जय जगदीश हरे करते रहे और जो भी शरीर में दुख है वो चला जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट नीचे का। वो भी कुछ देर के लिए जगदीश कहेंगे जगत का ईश्वर भगवान, लेकिन बाद में यही भावना रहेगी कि उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो भगवान इस प्रकार के विचार से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान में होता मान माय अस्तु क्योंकि माय अस्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी माँ उनको प्रणाम करने लगे, ईश्वर समझ करके प्यार न करे, गोद में न उठाए और पिता भी हृदय सुनना लगा। भगवान देव चाहते थे, उसके बाद उनको माँ कुछ मिठाई देगी खाने को, अपने गोद में उठा लेगी और परिश्रम दूर करने को सीखेगी। पहलवानी करके आए हैं, कंस का वध करके आए हैं, सत्य मानना बेटा को पानी देना, पंखा झलना, ये कृष्ण चाहते थे और प्यार के वचन चाहते थे, वो जय जगदीश हरे नहीं चाहते थे। इन दोनों के विचार वो बदल गए क्योंकि वसुदेव जी के, तो भगवान को बहुत फीका लग रहा था। तब उन्होंने अपनी जन्महीन माया का विस्तार किया। तो श्री भगवान अपने बड़े भाई श्री बलराम के साथ माता पिता के एकदम निकट खड़े होकर रहे। सब पितरऊ एक क्या माता पिता के पास एक क्या आ करके और बोले ताते के सागर आदर्श संबोधन से कहा हे अम्मा हे माँ तो हे पिताश्री इस प्रकार से मैं संबोधन किया भगवान मानो ये कह रहे हैं कि हम इतने दिन दूर रहे कोई सेवा नहीं किए शायद इसीलिए हमको हृदय से नहीं लगा रहे हैं। नो जो बाल पौगन कई सोरा पुतला धाम भवन हे माँ हे पिताजी हम दोनों से आप लोगों कोई सुख नहीं मिला। बचपन में भी पौगंड अवस्था में भी और किशोर अवस्था में भी माता पिता को बच्चों से एक सुख मिलता है बच्चा रहते हैं तो उनको गोद में लेने का खिलाने पिलाने का और छोटे छोटे बच्चे भी जब रुष्ट होते हैं तो उनको मनाने का यह सुख है। लेकिन हम लोग तो दूर रहे दोनों भाई बचपन में पौगंड अवस्था में 6 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था की और 11 से 15 तक किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में भी कोई सुख नहीं मिला बचपन में भी सुख नहीं मिला। जबकि आप नित्य उत्कंठित रहते थे इतनी उत्कंठा थे कि बच्चे को रहती हुई जिस बच्चे को जन्म लेते ही वे दूर गांव में पहुंचकर आए तो भी क्षत्रिय का बच्चा गोप के यहाँ चिंता रहती थी कैसे होगा कितना बड़ा होगा क्या खाता होगा पीता होगा हमेशा चिंता रहती थी उत्कंठा रहती थी देखने की। रोहिणी के तरफ से बलराम जन्म लिए थे बसदेव जी को ये पता तो था ही कि मैं पुत्र जन्म लिया है चाहते हुए भी वे ब्रज में नहीं जा सकते थे उत्कंठा रहती थी मिलने की देखने की और नित्यम उत्कंठा नित्य कंठ के नित्य लालसा रहते थे इसलिए आप तो कोई सुख नहीं मिला हमसे नाशो न भोजन की आप दोनों को हम दोनों का संग नहीं मिला और हम दोनों का ऐसा कर्म छूटा हुआ है, ऐसे भाग्यहीन हैं कि हमको माता पिता से दूर रहना पड़ा। न लब्धो दैव हतै, दैव के द्वारा मारा हुआ है, मारे हुए हैं। भाग्य खराब है हम दोनों का, इसलिए जन्म लेते हैं माता पिता से दूर रहना पड़ा, आपके निकट वास नहीं मिला। माता पिता से जो सुख प्राप्त होता है बचपन में किशोरावस्था में सौगंध में, वो हमको सुलभ नहीं हुआ। यद्यपि इससे ज्यादा सुख मिला नंद यशोदा के यहाँ, भगवान मन में सोच रहे हैं उससे बहुत अधिक सुख मिला तुरंत में, लेकिन मुझे देवकी वसुदेव के द्वारा नहीं मिला, इसको कारण है। ऐसे बच्चों की कल्पना कीजिए जिसका जन्म हो और जन्म से ही माँ का स्तर पीने को न मिले और पिता का प्यार नहीं दूर रहना पड़े, इसलिए भगवान कह रहे हैं हम दोनों हक भाग्य थे। ना आप लोगों को हम दोनों से सुख मिला और ना आप दोनों से हम लोगों को सुख मिला, न हम दोनों से आप दोनों को सुख मिला, ऐसा दैव का विधान, ऐसी परवस्था। माँ को कितने संख्या रहती होगी जन्म लेते ही बच्चा गोकुल पहुंचा दिया गया, बच्चा भी इतना भाग्य क्षत्रिय का बच्चा होकर भी जाकर उधर गाय बकरी चला रहा है, और दूध दही चुरा कर दिखा रहा है। संबोधन करते तो कहते हैं सर्वार्थ संभव देह जंतु पोषित हो जाता है, यह मनुष्य देह सर्वार्थ संभव सभी अर्थों को देने वाला है, इसी देह से धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ कमाया जाता है। इस देह को जिन दोनों ने मिलकर जन्म दिया, जनित जन्म लेने के बाद पोषित पोषण किया, तो ऐसे माता पिता की सेवा कोई मनुष्य 100 वर्षों तक करे और पूरा पूरा फिर भी माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। भगवान का वाक्य सर्वार्थ संभव के हो जनता को सीता हो सके मनुष्य देह के द्वारा सब अर्थ साधित होता है, चाहे अर्थ पैसा कमाए या स्वर्ग धर्म काम या मोह मोक्ष, जो भी अर्थ है सब अर्थ साधित है इस देह से। अब देह को जन्म दिया माता पिता ने, और माता पिता बड़े स्नेह से इस देह का पालन पोषण करते हैं। जनता पोषिता ऐसे माता पिता के सेवा 100 वर्ष तक कोई करे मनुष्य तब भी ऋण का शोभन नहीं होगा। भगवान अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, यह आत्मजह प्रयोग हो जो भूत है माता पिता को अपने शरीर से और ध्यान से समर्थ होने पर भी सेवा नहीं करता है, वृत्ति न दब गया जो बेटा समर्थ है शरीर से तंदुरुस्त है और पैसा भी है उसको समर्थ करते हैं। समर्थ है लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता को भोजन नहीं देता है, उनका खर्चा नहीं देता है, वृत्ति है। ऐसे व्यक्ति के मरने पर यमराज के दूत नरक में ले जाकर उसी का मांस काट काट कर उसके मुंह में खिलाते हैं। माता पिता भूखे हैं या भोजन नहीं मिलता है या कपड़ा सुख से नहीं मिलता है और बेटा अपनी रानी के साथ कहीं रेस्टोरेंट भी खा रहा है कहीं कुछ कर रहा है तो खाए ठीक है लेकिन नरक में जाने पर किसी का मांस काट काट करके चमड़ा के भी तलवार से देते हैं मुँह में स्वमांसम खा जाएंगे। भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, कल्प कर रहे हैं कोई बेटा समर्थ है धन भी है उसके पास और शरीर में स्वास्थ्य भी है शक्ति है पर आत्मना शरीर से और धनेन च धन से, शरीर से और धन से यदि वृत्ति नहीं देता है, उनके दिल का भी व्यवस्था नहीं करता है, जमराज के दोस्त परलोक में नरक में उसका मांस काट कर उसको लाते हैं। मांसन खा गए, जब नरक में उसको भूख लगती है तो कहता है कि भोजन चाहिए, तड़प रहा है। जमराज के दूत बड़े कठोर होते हैं, भगवती कभी दे रहे हैं तो उसके हाथ से मांस काट करके या पैर से मांस काट करके कहीं से भी काट करके और कहते हैं खाओ, और वो खाना पड़ता है क्योंकि भूख से छटपटाता है। मातरम पितरम वृद्धम, जो समर्थ होने का भी बूढ़े माता पिता को, जो माता पिता बच्चे का पालन किए हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनमें शक्ति नहीं रह जाती है, रोगी हो जाते हैं, अपना पालन करने की शक्ति नहीं रह जाती। मातरम की कलम दुख दुध माता और दुध भारजान छाप हुई, जो व्यक्ति समर्थ होने पर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता है और साधु पत्नी का पालन नहीं करता, पत्नी के लिए जिसका पति होता है ये पति से प्रेम करने वाली है और उस पर कोई संकट आ जाए तो इसमें उसका पालन पति नहीं करता है, बच्चा जो शिशु है साधुन भारजा सुतन शिशु पुत्र अभी शिशु है और गुरु प्रथम विक्रम है और गुरु वृद्ध हो गया या असमर्थ है अपना कार्य करने में और कोई ब्राह्मण अथवा कोई शरण में आया हुआ व्यक्ति जो असहाय है और जिसके शरण में आया है वो समर्थ है परंतु पालन नहीं करता है तो शोषण में करता, वो सांस लेता हुआ भी मरा है, उसके जीवन में कुछ काम नहीं है, सांस भटकती है लेकिन उसको भगवान कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है। जो माता पिता का और पतिव्रता पत्नी का शिशु बच्चे का गुरु का ब्राह्मता और शरण में आए हुए व्यक्ति का पालन नहीं करता है तो वह जीवित ही मरा हुआ है। लगातार इन लोगों में भगवान कल्प कहने हैं, कल्प का यदि समर्थ है तो, यदि असमर्थ है तब तो कोई बात नहीं, समर्थ होने पर पालन करना चाहिए। आप दोनों कंस से बहुत भयभीत थे और आपको उसने बहुत सताया, करा कि उसने दिन काट रहे थे और हम समर्थ होते हुए सेवा नहीं की। एक तरह से भगवान अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग मसला के कारण भी में थे और हम लोग मर्ज में थे पर आ नहीं सकते थे। देवकी वसुदेव के हृदय में कितना दुख होता होगा, भगवान कह रहे हैं कि आप लोग दुखी थे कंस के डर से, आप दिया नहीं सकते क्षेत्रज में, और हम तो समर्थ थे आ सकते थे पर नहीं आए, हमारी गलती है, हमको क्षमा कीजिए। आपकी सेवा के बिना हमारे जितने दिन बीत गए वो सब व्यर्थ है। तब क्षमता मात्र हम परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन हैं, अतः आप हमको क्षमा कर दीजिए। परतंत्र किस बात के हैं, परंतु तो सवेरे ही गाय चराने जाना पड़ता था और शाम तक वन में घूमना होता था, आने का समय नहीं मिला, दूसरे के अधीन थे, कई लोगों के अधीन, गोपियों के अधीन, सखाओं के अधीन, नंद बाबा के अधीन, माँ यशोदा के अधीन, उनके प्रेम के अधीन थे, हम आ नहीं सकते। ड्यूटी में बंधे हुए थे गाय चलाने में, तो आप क्षमा कर दीजिए हमको। भगवान मानो ऐसा करे कि हमको हृदय से नहीं लगा रहे हैं, आलिंगन नहीं कर रहे हैं, तो हमसे घृणा कर रहे हैं, अपराध है, सेवा नहीं की इसलिए। माँ तुम क्षमा कर दो, बहुत कष्ट दिया कौन, आप दोनों कष्ट में थे और फिर भी सेवा नहीं किया, तो गलती होती ही। माँ तुम क्षमा कर दो, भगवान श्री कृष्ण माया मनुष्य है, अपनी जो माया से मनुष्य के रूप में अवतरित है। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, परम मनोहर है, विश्व की आत्मा है, विश्व के परम प्रिय विश्वात्मा है। ऐसे श्री कृष्ण की लीला वचन को सुनकर मोहित और देवती और वसुदेव मोहित हो गए। कृष्ण को उठा करके आलिंगन किए, गोद में रखे, आलिंगन किए। भगवान की बात सुन करके वात्सल्य भाव मर गया। कृष्ण बलराम भी आंखों में आंसू भरे थे। मोहित हो गए, स्नेह के बस में हो और परिस्वर्ग्य आलिंगन करके मुदर आपको बहुत मोद प्राप्त किए। श्री बलराम जी को वसुदेव जी आलिंगन में लिए और श्री कृष्ण को मां देवती। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोल पाए, न किंचित उच्चतुल। हे महाराज परीक्षित, ये दोनों कुछ देर कुछ बोल नहीं पाए। स्नेह पासे न चार तो, स्नेह पास स्नेह के दृढ़ बंधन में वे बंधे थे। अक्सर स्नेह उमड़ रहा था, कुछ बोल नहीं रहे, केवल अश्रु धारा आंखों से चल रही थी। आंसुओं की धारा से कृष्ण को सींच दिए। सिंचमतौ अश्रु धारा भी क्यों नहीं कुछ बोल पाए, क्योंकि गला अवरुद्ध हो गया आंसुओं से। वाष्प कंठ विमोह होता, अब पूर्ण रूप से स्वर्ग को विस्मृत हो गए भगवान की बात से, बात में टूट गए, वात्सल्य भाव में टूट गए। इस प्रकार माता पिता को आश्वासन देकर भगवान फिर अपने नाना उग्रसेन जी को छुड़ाए काला देश से। उग्रसेन जी को भी जेल में बंद करके कंस स्वयं राजा बन गया। माता महम उग्रसेन, उग्रसेन जी को छुड़ा करके भगवान जादुओं का राजा बना है उग्रसेन को। राज्य अभिषेक करके भगवान ने कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हम लोगों को आप आज्ञा दीजिए। और जब मैं आपकी सेवा में रहूंगा तो देवता भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपको भेंट देंगे कि दूसरे राजाओं की तो बात नहीं क्या है, तो हमारे पूर्वज महाराज जजाति के साथ से जदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसीलिए मैं नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपका सेवक हूँ, भेंट करूँ, आप हमें आज्ञा दीजिए आप क्या सेवा करें। मरीज प्रकार उग्रसेन जी को राजा बना करके भगवान ने अपने समस्त जातिजनों को, समस्त जागरों को बुलाया, जो लोग मथुरा छोड़ करके अपना घर द्वार छोड़ करके अपने संबंधियों के यहाँ चले गए थे, दूर देश में रहते थे, कंस के भय से सब भाग गए थे, कंस सब धन छीन लिया था, घर छीन लिया था, लेकिन भगवान अब सबको बुलाया, जहाँ तहाँ से पता करके सबको बुलाए और सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर घर की व्यवस्था करके दिए, धन दिए और घर दिए, जितने भी जदु विष्णु अंधक मधु दशार अंधक आदि थे, जदवंशियों को अंधक वंशियों को मधुवंशियों को इन सबको भगवान ने बुलाया और मथुरा में आने पर सबका स्वागत किए और सबको बहुत सुंदर सुंदर भवन दिए। तो भगवान का धाम है मथुरा, भगवान के समान विभु है, सबको स्थान दे, सबको धन दे, कहते हैं कि भगवान तो सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, सबको सबकी व्यवस्था करते हैं, तो जादवों की व्यवस्था करना क्या करते हैं उनके लिए, तो वे सभी बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित थे, अब कौन शादी का कोई भय नहीं था, उनका कोई शत्रु नहीं था, कृष्ण बलराम की भुजाओं से वे सब सुरक्षित थे, लब्ध मनोरथ था और उनके मनोरथ पूरे हो गए और कृष्ण बलराम के साथ रहना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी हुई, मथुरा में रहने लगे, अपने घरों में वे पूर्ण होकर कृत्य होकर आनंद लेने लगे, सुख से रमने लगे, बहुत सुखी थे, कृष्ण रामा पर कह रहे हैं। उनके जीवन में जो भी ज्वर था, दुख था, वो सब चला गया, जोर शब्द का आजकल आप है टेंशन, तो टेंशन फ्री हो गए, सुख से जीने लगे। और सबसे बड़ा सुख क्या था, सुनता पहा रहा गीता मुकुंद बदनाम भोजन, उनका सबसे बड़ा सुख था कि वे अहा अहा दिन 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 में कई बार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को देखते रहते। विक्षुणता विशेष रूप से और ध्यान से आंखों से भगवान कृष्ण का मुख कमल निहारते रहते। मुकुंद बदनाम बोलता हूँ प्रतिदिन निहारते देखते भगवान कृष्ण का मुख नित्यम प्रमुदित श्रीमान। श्री कृष्ण का मुख है सदा प्रसन्न रहता, उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहते थे और उनके चितवन में दया स्नेह रहता, उनकी दृष्टि में स्नेह मुख में मुस्कान। इस तरह से सब पर वे मुस्कुरा करके देखते थे प्रसन्न चेहरे से, यही सबसे बड़ा सुख था। तत्पुत्र वयस्व प्यासन तो मथुरा में जो वृद्ध हो गए थे पहले, वृद्ध लोग भी युवक बन गए और अति बल जैसा उनके शरीर का और इंद्रियों का बल बढ़ गया, अति बलवान हो गए। किस कारण से, क्योंकि वो टॉनिक पी रहे थे। क्या टॉनिक था, सत्रोत्सव लानों की बड़ों जैसा पीवंत अक्षर मुकुंद सुधर में ये बारम्बार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को पीते थे देखते थे, तो श्री कृष्ण के मुख कमल में जो सुधराई है सौंदर्य है वही अमृत है। तो उस अमृत को पीते थे दिन में कई बार और प्रतिदिन, तो इस कारण से शरीर बलवान हो गया और इंद्रियां बलवान हो गई और बूढ़े भी जवान हो गए, अति बलवान हो गए। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, कितनी अद्भुत बातें लिखते हैं बोलते हैं। मथुरा के लोग प्रवयसा है, अपनी प्रवयस लोग भी जवान जवान हो गए और अति बलवान हो गए, क्योंकि आँखों से श्री कृष्ण के मुख कमल को पीते रहते। बनता अक्षर मुकुंद से मुखाम्बुज सुधा मुहु मुहु, बारम्बार श्री कृष्ण के मुखाम्बुज को पीते रहते। कैसे पीते थे? अक्सर आंख से पीते रहते थे। श्री कृष्ण को देखना बड़ा आनंददायक है। इतना आनंद होता है कि उससे बुढ़ापा नष्ट हो जाती है, शरीर बर्बाद हो जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान को रोज निहारना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को दिन में कई बार और कम से कम एक बार दो बार अवश्य देखना चाहिए। ध्यान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम हृदयम्। इसी के लिए आचार्य लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना करते हैं। संसार में दिन प्रतिदिन मूर्खों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह ज्ञान देना बहुत जरूरी है। एक दिन ऐसा संसार हो जाएगा कि रहने लायक नहीं, सब मूर्ख ही मूर्ख भरे रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा संख्या हो गई, जिधर देखो उधर ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं और जब जन जन पर जमा होते ईश्वर क्या क्या है, अरे कुछ नहीं तो निराकार है। निराकार का मुंह कैसे देखोगे? ये मुखामुख सुधा तो स्वयं सुंदर कह पी सकते हैं। जो बांसुरी बजाते हैं अपने भाई बलराम जी के साथ हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन करना चाहिए। ऐसे संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है। भगवान कोई निराकार फिराकार नहीं है, यह केवल मूर्खता है सोचना है। और बोलना तो मूर्खता है। तो भगवान के सुंदर स्वरूप को इस मनुष्य जीवन में देखना है, पीना है, इससे वंचित नहीं रहना है। अरे सोच करके कि भगवान ऐसे है बिना हाथ पैर वाला है, यह कोई मूर्खता है सोचना। विद्वत्ता है भगवान के अंगों को देखना, सुनना, बोलना, उनसे प्रेम करना। तो इस प्रकार मथुरा के लोग भगवान के मुख कमल को देख देख करके वृद्ध विद्वान हो गए और बलवान हो गए, अति बलवान। उसके बाद कथा है कि वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम के पढ़ने की व्यवस्था की। अब तक तो गाय चलाते थे, पढ़ाई लिखाई किए नहीं। वसुदेव जी इनकी दीक्षा कराया गंगाचार्य से, जब जो पवित्र धारण करवाए और पढ़ने के लिए अवंतिका भेजे उज्जैन में। उज्जैन में काशी के पंडित रहते थे जिनका नाम सांदी पंडित था। तो कल उस कथा को विस्तार से कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्री श्री राधा गिरधारी जी की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। इस कथा सत्र का छठा दिवस है। आप सभी कथा प्रेमी भक्त हैं। हरे कृष्णा, कुछ समय बैठिए प्लीज। अभी कथा के बाद में ड्रामा भी है। कृपया अपने स्थान पर कुछ समय के लिए बैठिए। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और विशेषकर आज हमारे बीच में है भक्तिरत्न, परम पूज्य भक्तिरत्न साधु महाराज। हम उनका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि आज हमारे बीच में पधारे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी कई अन्य भक्त यहाँ पधारे हैं, आप उनका भी हार्दिक स्वागत है। क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है, सूचना भी नहीं पहुंच पाई है, पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, माताओं का भी। हरे कृष्णा। प्रसादम में अभी कम से कम 25 मिनट की देरी है, आप अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी ड्रामा भी है और सूचनाएं भी है, इन सबका आप आनंद लीजिए। ड्रामा का अजामिल की अजामिल के ऊपर प्रसंग पर ड्रामा होगा, कम से कम 15-20 मिनट।